फिर आप देखिए कि सब्र का अपोजिट चूँकि बेसब्री होता है ना, तो इसकी भी कुछ मिसालें हम देख लेते हैं ताकि हमें वाकई लग जाए कि हम बेसब्रे तो नहीं हैं, और साथ ही साथ मुहासबा भी होगा इसी के ऊपर। बेसब्री की एक बात होती है कि सुनने की बजाय बोलने लगना, कोई सुनने का वक्त है, बात अब बैठे और बीच में बातें कर रहे हैं, ये बेसब्री है। किसी की बात काट देना, गाड़ी चलाते हुए सब्र क्या होगा, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और धक्के मार रहे हैं, स्टेयरिंग पे स्टक हो गए हैं, जल्दी में इशारे तोड़ते हुए जा रहे हैं। फिर अब देखिए गुस्से का आ जाना बेसब्री की एक अलामत होती है। फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए किसी के बारे में राय कायम करने में हम बेसब्री कर लेते हैं, किसी के घर पे गए डोरबेल ही इतनी लंबी करते गए, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त में बरकत दे, वरना ऐसा हो कि एंड पे आपको सब्र करना पड़े। मेरे पास तो मेरा कोई 10 सफ़ों के नोट्स हैं जो मैं गिव अप करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम इसी सफ़र में कहीं ना कहीं आगे जाके भी इसको अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद करेंगे। तो अब आगे चलते हैं क्योंकि ये दौरे कुरान है। अब सब्र की एक ज़िंदा कहानी, अल्लाह ताला ने सब्र की बात की तो एक घराने के सब्र की बात कर रहे हैं, एक फैमिली का सब्र है। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, बस जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही कर ले, और जो रज़ा और रग़बत के साथ कोई भलाई का काम करेगा अल्लाह को इसका इल्म है और वो इसकी कदर करने वाला है। पिछले पारे में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा पढ़ा, इस पारे में सफ़ा और मरवा की बात हुई, और जो ही सफ़ा और मरवा की बात आती है तो एक माँ और बच्चा याद आता है, बीबी हाजरा और इस्माइल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80-90 के करीब थी जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बीवी और बच्चे को सहरा में छोड़ो। ये वो उम्र होती है कि जब इंसान कमज़ोरियों की तरफ माइल होता है, उसको बीवी बच्चे और बुढ़ापे की औलाद, अकलौता बच्चा कितना प्यारा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर उस वक़्त बेसब्री का मुजाहरा करते और सब्र ना करते तो वो कह सकते थे कि अल्लाह ताला सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, बस बच्चों के याद है, क्योंकि जहाँ बच्चे और घर वाले आते हैं उस वक़्त हमारे सारे उज़र दूसरी तरफ रह जाते हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए अपने घर को बेघर कर दिया, खुद अकेले रहना गवारा किया और बीवी बच्चे को छोड़ा है। अगर उस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फ़ैसला ना करते, बताइए क्या आज वहाँ इतनी खूबसूरत यादगार कायम होती खाना काबा के तौर पे? उस वक्त इब्राहीम ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग आएंगे। कल इब्राहीम ने एक बंजर और एक वीरान जगह को आबाद करने के लिए अपने घर को वीरान किया। क्या आज हम सबको अपने घरों के तकाजे अल्लाह के तकाज़ों से आगे ले जाएंगे? आज भी देखा जाए तो दुनिया एक दीन के नाते से वीरान ही है। आप कितनी खूबसूरत जगहों को देख लें, दुनियावी तरक्की के अरूज पे हैं, लेकिन दीन का नाम और निशान नहीं। हम किसी की बात ना करें, जिस जगह आज अल्लाह ताला हम सबको मौका दे रहा है, क्या ये भी जगह कोई वीरान जगह नहीं है? आप कहेंगे यहाँ तो बहुत दरख्त हैं, बहुत सब्ज़ा है, लेकिन मुझे दीनी तौर पर तो बहुत उदास जगह लगती। जब मैं 2 साल पहले यहाँ आई तो मुझे ना कभी नाम सुना था ना कभी गौर किया था, लेकिन जब मैं आई और मुझे देखा कि इतने मुस्लिम हैं इधर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई तनकीद नहीं करने लगी, लेकिन मुझे तब भी अंदाज़ा हुआ, और अब तो गालिबन किसी ने बताया कि 70 के करीब मस्जिदें इस छोटे से शहर में, और ये बात तो बहरहाल किसी ने बड़े यकीन से कही कि यहाँ मस्जिदें चर्चों से ज़्यादा हैं, और ये आप ख़ुद भी देखते हैं कि एक कोने से लेके सिर्फ आप अपने वॉकिंग पे खड़े हो जाएं तो 8 से 10 मस्जिदें आपको मिलती हैं। लेकिन जब हम नस्लों का हाल देखते हैं, जब हम मर्दों और औरतों का हाल देखते हैं, जब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को देखते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ घर आबाद हैं दीन के नाम पर? क्या मस्जिदें आबाद हैं भी कि नहीं? मस्जिदें तो बन गई, जिसको अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। आज के दौर में मस्जिदें बनाने से ज़्यादा मस्जिदों में जाने वाले लोग तैयार करने की ज़रूरत है। इतना तकलीफ़ अमर है, जिसको यूरोप में सब जानते हैं कि सारे चर्च बिक बिक के अब मस्जिदें बन रही हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई आता ही नहीं। किसी ने एक जगह से मुझे गुजरते हुए यहाँ भी दिखाया कि अब ये चर्च जो है फॉर सेल लगा हुआ है, और कोशिश की जा सकती है कि इसको किसी इस्लाम के नाम पे ले लिया जाए। वजह क्या है कि जो संडे के संडे खुलना था अब नस्लें उनकी भी नहीं आती, जैसे हमारे नहीं जाते उनके भी नहीं आते। मैं सोच में पड़ गई कि जहाँ ये वक्त आ गया कि अल्लाह की चुनी हुई एक कौम उनके दीनी इदारे बिक के दूसरे दीन के नाम पर आ गए, तो अगर हम इन इदारों को आबाद नहीं करेंगे बताइए क्या होगा? आज भी एक ऐसी रिपोर्ट मौजूद है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के इलाके की कि 80% मस्जिदें जो باہر کے ملکوں میں بھی ہیں وہ سارا سال خالی رہتی ہیں، جمعے کے جمعے وہاں حاضری ہوتی ہے، کچھ جگہ عید پہ ہوتی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام کرا لے کہ مسجدیں آباد ہو جائیں، اس شہر کے لیے دعا کر دیں۔ الحمدللہ دین پہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا، اس بات کا قطن کو یہ مطلب نہ سمجھے کہ جو مسجدیں قائم ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات جو ہے وہ تعلیم کے متعلق ہے۔ آپ نمازیں بھی پڑھ لیں لیکن نماز صحیح نہ پڑھنی آتی ہو تو کیا بات بنے گی؟ تو اس وقت کا جہاد کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے تقاضوں کو تھوڑا سا کم کر کے ان کے پیٹ پہ پتھر باندھیں، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ اسماعیل نے کیسے صبر کیا تھا۔ افطاری کے وقت اپنے بچوں کو اگر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی سنائیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ جب خود پیٹ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو پھر یاد آتا ہے۔ ہم جب اپنی اولادوں کے پیٹ بہت بھر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہم خود ہی مصروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ بی بی ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ آپ سب شعور سے آمین کہیے گا، کیونکہ نہیں نہیں نہ کہیں، سوچ کے کہیے گا، کیونکہ بعض دفعہ بے سوچے سمجھے آمین کہی ہوتی ہے اور جب تقاضے سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بڑا مشکل سودا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، آخری بات سن کے تو میری خود ہی مسکراہٹ آ گئی میرے چہرے پہ کہ فَإِنَّ اللَّهَ الشَّاكِرُونَ عَلِيمٌ، جو خوشی سے کام کرے گا اللہ اس کی بڑی قدر کرے گا، وہ کبھی کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ آپ کسی کو ایک گز کا ٹکڑا دے دیں تحفے میں، اگلے کو فکر لگ جاتی ہے کہ جب تک اس کو پلٹا نہ دیں۔ کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے دیں، آپ کو چین نہیں پڑتا جب تک آپ اس کو نہ دے دیں۔ کیا اللہ ہماری نیکیوں کو اور ہمارے تحفوں کو رکھے گا؟ وہ تو اس سے زیادہ بڑھا کے دے گا، لیکن نیت صرف اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، کچھ پانے کے لیے نہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں ان سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگ جائیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان باطلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس ایک آیت میں سب سے زیادہ کائنات کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں آنکھیں تو کھولو، غور سے دیکھو اللہ نے کیا کچھ بنا دیا، لیکن کچھ لوگ اس کے علاوہ دوسروں میں کھو جاتے ہیں۔ یہاں سے اب پارے کا وہ مضمون شروع ہوتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی معرفت کروائیں گے، میں کون ہوں، پھر شرک کی کچھ قباحت، اور اس کے بعد پھر کچھ احکامات ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے ہو میں کیا کروں، پھر آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتا ہے کیوں پڑھو، آج ماؤں کا یہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، مارتی ہیں ڈانٹتی ہیں، اب وہ عادی نہیں رہے تو ان کو مشکل لگتا ہے۔ لیکن اگر بچوں کو یہ ایک آیت ہی شعور سے پڑھا دی جائے کہ دیکھو ذرا یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ ہم سب جہاں بیٹھے ہیں ہمیں تو کسی اسکرین پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کھلی جگہ پہ چلے جائیں اور پہاڑوں سے لے کے درختوں کے پتوں تک ذرا ایک نظر دکھا دیں بچوں کو، یہ رب کی ذات ہے، اس رب کو پہچانو، کیا کچھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا میں کائنات پہ تدبر کرتی ہوں، جب میں سمندر کی سیر پہ جاتی ہوں تو کیا میں سمندر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاتی ہوں، کیا کشتی میں بیٹھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی ہے، کیا رات کو دن میں بدلتا دیکھ کر اور دن کو رات میں ڈھلتا دیکھ کر میں अच्छे दिनों से बुरे और बुरे दिनों से अच्छे दिनों के पलटने का यकीन रखती हूँ। एक एक चीज़ बोल बोल के सुनाती है। पिछले साल का जो हमारा दौरे कुरान था उसका थीम ही यही था कि अल्लाह को पहचानो उसकी निशानियों से। उसमें हमने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें बात की थी कि ये कायनात हमें कितने सबक दे रही है। लेकिन हुआ क्या कि जब से इंसान मादा प्रस्ताना ज़िंदगी गुजारने लगा, मटीरियलिस्टिक ज़मीन में आया, तो अल्लाह से ताल्लुक़ टूट गया। अब देखिए कि जब लोग खुली छत के नीचे सोते थे तो आसमान दिखता था ना, सितारे भी दिखते थे, फिर बंदा कहता सुभान अल्लाह, कहता वही सो जाता है। अब हमने अपनी छतें सजा ली, उस पर फानूस लगा लिए, लाइटें लगा ली, कार्विंग करवा ली, अब सोचते हैं हाय वाह किसने बनाया, कौन सी कंपनी है, कौन सी टाइल है, कहाँ की है। नतीजा क्या हुआ? जो फितरी दुनिया में लोग रहते हैं ना उनका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ता है, और जो मादी दुनिया में रहते हैं उनका ताल्लुक मादा से है। ये वजह है कि आज मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई। अल्लाह ताला हमारी अबूदियत के जज्बात को अपने ही लिए खालिस कर ले और इसकी जगह किसी दूसरे को ना ले। फरमाए इतनी प्यारी कायनात बना के छुप जाने वाले रब को छोड़कर बाज़ लोग इतने नाकदरे हैं कि वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, वो इनके ऐसे गर्वीदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्वीदगी होनी चाहिए। इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। क्या मुझे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा महबूब है? अल्लाह की मोहब्बत जो है ना, इसमें शराकत नहीं बर्दाश्त होती, शेयरिंग अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी मोहब्बतों की बहुत सारी चीज़ें दुनिया में रखी हैं, अगले ही पारे में हम एक लंबी लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन चाहिए क्या कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। कैसे पता चले कि मुझे अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत है या औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है, घर से, माल से, कपड़ों से? सवाल होता है ना दिल में, पता नहीं चलता कि किससे कितनी मोहब्बत है। तो इसका एक छोटा सा मेयार और क्राइटेरियन हम अगर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह बात आसान होगी। आम हालात में नहीं पता चलता अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, हर एक कहता है, लेकिन फ़र्क अब आता है जब तकाबुल है। एक तरफ बच्चा है और उसका एक ऐसा तकाजा है जो अल्लाह की नाफरमानी का है। अब बच्चे का तकाजा पूरा किया तो दलील दे दी इस बात की कि बच्चे से अल्लाह की नस्बत ज़्यादा मोहब्बत है। एक तरफ हराम है, एक तरफ हलाल है, एक तरफ अल्लाह की पसंद की चीज़ें, एक नापसंद है। अगर अल्लाह की नाफरमानी कर ली तो समझ लें कि फिर हमें अल्लाह से ज़्यादा उन चीज़ों से प्यार है। इसी तरह रिश्तेदार, औलाद, बिरादरी, ख़ानदान, हम कहते हैं क्या करें, बिरादरी नहीं छुटती, इनके मामले सारे देखने पड़ते हैं, अल्लाह किसी से रोकता नहीं। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला की बात से टकराव होने लगे वहाँ छोड़ के हमने इस बात की दलील देनी है कि हम अल्लाह से मोहब्बत में शदीद हैं। लेकिन कुछ लोग जो अल्लाह से मोहब्बत के बजाय दूसरों से रखते हैं, अब उनका एक अंजाम आँखों के सामने आता है। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, काश जो कुछ अज़ाब को देखकर इन्हें सूझने वाला है वो आज ही ज़ालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं। और ये कि अल्लाह ताला सज़ा देने में भी बहुत सख्त है, जब वो सज़ा देगा उस वक्त ये कैफियत होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरोकारों से बेतल्लुकी ज़ाहिर कर देंगे। क्यों भला? इसलिए कि तो वहाँ हर एक परेशान होगा। देखिए, दुनिया में कुछ लोग भोलपन में और मोहब्बत की वजह से दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं। ऐसी उम्मीदें लगाने वालों के जुमले आपने सुने होंगे, हमें भूल ना जाना, हमें याद रखना, हमें वहाँ बुला लेना, जब नैया हमारी डूबने लगे तो हमें तुम पुकार लेना। वो तो खुद फंसे होंगे। देखिए कि किसी ने आपको उम्मीद दिलाई हो, मिसाल दूंगी जो किसी के साथ हुआ, ये वाक्य अक्सर लोगों से हो जाता है कि एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज के लिए उन्होंने किसी से बात की होती है कि फलां हमारा वाकिफ है, वो हमारा एक्स्ट्रा लगेज निकाल देगा। जब वहाँ गए वो है ही नहीं, पता चला वो तो बीमार हो गए, अब करें क्या, सामान छोड़ें, लें, पैसे दें? छोटी सी मिसाल है। जो खुद बीमार हो गया, जो खुद अवेलेबल नहीं, वो दूसरे को कहाँ फ़ायदा देगा? हम जिन इंसानों की उम्मीद और तवक्को लगाए बैठे होते हैं, आप सोचिए कि उन सबको खुद नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। अल्लाह के तो नबी अपने बारे में कहते थे कि मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर फरमाया मगर सज़ा पाकर रहेंगे और इनके सारे असबाब और वसाइल का सिलसिला कट जाएगा, और वो लोग जो दुनिया में इनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता। तो चीज़ रही इसको, कभी ज़िंदगी में आपसे कोई काम होते होते रह गया हो, ट्रेन छूट गई, जहाज़ चला गया, जो चीज़ आप करने जा रहे थे वो रह गई। मैंने तो लोगों को इस पर भी परेशान देखा, हाय कूपन एक्सपायर हो गया, वो एक दिन पहले पता नहीं चला अंदर रह गया, $10-5 की चीज़ नहीं ले सके। आप सोचिए कि अगर क़यामत के दिन ये हाल हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी और वहाँ जाके लोग कहें कि अल्लाह हमें वापस भेज, क्यों मांग रहे हैं वापसी का सफ़र। इसलिए अब इन लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा शौर से सुनने और सुनाने की ज़रूरत है। काश फिर हमको एक मौका दिया जाता तो जिस तरह आज हमसे बेजारी ज़ाहिर कर रहे हैं, हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। मैं सोचती हूँ कि जो लोग भी शिर्क में मुलव्वस हैं और उसके बावजूद दीन को भी कुछ समझते हैं, वो इन आयतों का क्या तर्जुमा करेंगे। यानी जिनकी उम्मीद पे लोग दूसरों को ज़िंदगी भर अल्लाह ताला को छोड़ के उनके पीछे लगे रहते हैं, क़यामत के दिन वो कहेंगे कि काश हम एक बार दुनिया में वापस जाएँ और हम अपने इन सारे पीरों बुज़ुर्गों और फ़कीर जो भी बड़े जिनकी उम्मीद थी उनसे बेनियाज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो उनसे बेनियाज हो चुके होंगे। यूँ अल्लाह ताला इन लोगों को वो आमाल जो ये दुनिया में रहकर कर रहे थे इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। हम अपना मुहासबा करते हैं कि क्या मैंने भी किसी गैर अल्लाह से उम्मीदें तो नहीं लगाई हुई, क्या मैं अपना वक्त ज़ाया तो नहीं कर रही, कल क़यामत के दिन क्या मैं अपने आप को इस हसरत का शिकार तो नहीं करना चाहती कि काश अल्लाह ताला मुझे एक बार फिर दुनिया में भेजे और मैं अपने आप को इनसे बेनियाज कर लूं। जितना वक्त दूसरों को राज़ी करना चाहते हैं ना, अगर उतना ही वक्त सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए लगाया होता तो अल्लाह ताला यकीनन उनसे जल्दी राज़ी हो जाता।